लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के डेल्टा नामक वेरिएंट इस समय वैक्सीनों के खिलाफ दौड़ में जीत रहा है। उन्होंने इस चिंताजनक स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से वैक्सीन के समान उत्पादन और वितरण की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। महानिदेशक गेब्रियेसेस ने जिनेवा में पाक्षिक प्रेस वार्ता में कहा कि दुनिया भर में कोविड 19 से हुई मौतों की संख्या 40 लाख पार कर जाना एक दहला देने वाला पड़ाव है, जो इस घातक वायरस की व्यापक तबाही की एक वानगी है। उन्होंने बताया कि अब तक वैक्सीनों की 2,95,00,00,000 खुराकों को दिया जा चुका है। उन्होंने टीकाकरण प्रयासों में तेजी लाए जाने की पुकार लगाई है। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए आग्रह किया है ताकि अगले वर्ष इस समय तक हर देश में 70% लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियेसिस ने आगाह किया है कि कोविड 19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया अब एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रही है। कोरोना वायरस के डेल्टा नामक वेरिएंट के मामले अब अनेक देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से उन देशों में हालात पर गहरी चिंता है जहां टीकाकरण का स्तर बहुत कम है। महानिदेशक गेब्रियेसिस कह रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है और अपना रूप लगातार बदल रहा है। इसकी निरंतर समीक्षा किए जाने और जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य उपायों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इस वेरिएंट के मामले अब तक 98 देशों में सामने आ चुके हैं और ये टीकाकरण के निम्न स्तर वाले देशों के साथ साथ उन देशों में भी तेज रफ्तार से फैल रहा है जहां बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कुछ देशों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट की शुरुआत की है, मगर ये भी ध्यान रखा जाना होगा कि ये प्रमाण पत्र भेदभावपूर्ण न हो, विशेष रूप से उन देशों के खिलाफ जहां टीके या तो उपलब्ध नहीं है या फिर कुछ खास प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की समीक्षा के संबंध में अपनी एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट बताती है कि महामारी के दौरान उपजे आर्थिक झटकों को सामाजिक सहायता उपायों से किस हद तक झेल पाना संभव हुआ है। कोविड 19 महामारी के दौरान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए देशों की सरकार ने अभूतपूर्व संख्या में सामाजिक सुरक्षा उपाय शुरू किए, मगर इससे धनी व निर्धन देशों में इसका असर अलग अलग देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
नई रिपोर्ट बताती है कि गरीबी रेखा से नीचे जाने का जोखिम झेल रहे 1.5 करोड़ में से लगभग 1,20,00,000 लोगों की मदद कर पाने में सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक आर्थिक संकट के असर को कम कर पाना तो संभव हुआ है, मगर ऐसा मुख्यतः उच्च और ऊपरी मध्य आय वाले देशों में ही हो पाया है। धनी देशों ने सहायता के लिए प्रति व्यक्ति के स्तर पर निर्धन देशों की तुलना में 212 गुना अधिक खर्च किया है, लेकिन निम्न मध्य आय वाले देशों में ये उपाय लोगों को नए सिरे से गरीबी के गर्त में धंसने से रोक पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जबकि निम्न आय वाले देशों में तो ये बिल्कुल नाकाफी साबित हुए। विश्व भर में सामाजिक संरक्षा नीतियों में $2,900 अरब का निवेश किया गया, मगर विकासशील देशों ने महज $379 अरब ही खर्च किए हैं। उच्च आय वाले देशों ने औसतन प्रति व्यक्ति $847 आवंटित किए, जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति $124 खर्च किए गए।
संयुक्त राष्ट्र अवर सचिव और निरस्त्रीकरण मामलों पर उच्च प्रतिनिधि ने आग्रह किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ उठाते समय साइबर जगत में पनपती सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। विश्व भर में 4.5 अरब से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल माध्यमों ने मानव जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं। यूएन अवर महासचिव ने साइबर जगत में शांति व सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल से भावी पीढ़ी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौर।
संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव इजुमी नाकामित्सु ने आगाह किया है कि टेक्नोलॉजी के लाभ उठाते समय साइबर जगत में पनपती सुरक्षा चिंताओं और चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाना होगा। विश्व भर में 4.5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2022 तक इंटरनेट से 28 अरब से ज्यादा नेटवर्क यंत्रों के जुड़े होने का अनुमान है। निरस्त्रीकरण मामलों पर उच्च प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने साइबर जगत में शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उच्च प्रतिनिधि नाकामित्सु कह रही थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल के प्रति भी सतर्कता बरतनी होगी, जिससे भावी पीढ़ी के लिए खतरे पैदा हो सकते हैं। गलत जानकारी के फैलने, ऑनलाइन हिंसक चरमपंथ और तस्करी, साइबर हमलों, निजी जानकारी को चुराए जाने सहित हाल के वर्षों में ऐसी दुर्भावनापूर्ण घटनाओं की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के उभरते खतरों से निपटने के लिए ठोस उपायों की पैरवी की गई है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत में 84 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के निधन पर बहुत दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस निधन पर व्यथित हैं। फादर स्टेन स्वामी का भारत के मुंबई शहर में सोमवार 5 जुलाई को निधन हो गया। यूएन मानवाधिकार प्रवक्ता एलिजाबेथ ने मंगलवार 6 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि स्टेन स्वामी को भारत के अवैध गतिविधि अधिनियम के तहत अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तभी से विचाराधीन अभियुक्त की स्थिति में कैद में रखा गया था और उन्हें जमानत नहीं मिली थी। फादर स्टेन स्वामी पर वर्ष 2018 में हुए प्रदर्शनों के संबंध में आतंकवाद संबंधी आरोप लगाए गए थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फादर स्टेन स्वामी एक प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, विशेष रूप से आदिवासी लोगों और अन्य कमजोर वर्ग के समूहों के अधिकारों पर उल्लेखनीय काम किया था। उन्हें मुंबई के तालोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और उन्हें कोविड-19 का संक्रमण होने की भी खबर थी। जमानत के लिए उनकी अर्जियां बार बार नामंजूर हुई थी। प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार से मानवाधिकार उच्चायुक्त की इस पुकार पर फिर से जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और एकत्र होने एवं संगठन बनाने की बुनियादी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बंदी न बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट और कई स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ पिछले 3 वर्षों के दौरान फादर स्टेन स्वामी और अन्य 15 मानवाधिकार पैरोकारों के मामले भारत सरकार के साथ बार बार उठाते रहे हैं और उन्हें विचाराधीन कैद से रिहा करने का आग्रह करते रहे हैं। और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के सभी विषय यूएन हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
के तार
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष इवान यूरकोविट्स ने शरणार्थियों और आप्रवासियों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रों की साझा जिम्मेदारी का आह्वान किया है। परम धर्म पीठीय पर्यवेक्षक ने कहा, चूंकि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बलात् आप्रवास नाटकीय रूप से बढ़ रहा है, अधिक उदार पुनर्वास नीतियों की और साथ ही साझा जिम्मेदारी के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की नितांत आवश्यकता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त UNHCR के अनुसार 2020 में समस्त विश्व में युद्ध, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से जबरन विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 24 लाख हो गई है। जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त की कार्यकारी समिति की 81वीं स्थायी समिति को संबोधित एक वक्तव्य में इस सप्ताह वेटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने स्मरण दिलाया कि शरणार्थी और आप्रवासी केवल संख्या नहीं है, अपितु वे हमारे भाई बहन हैं और इसीलिए किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। वेटिकन के वक्तव्य में कहा गया कि यह बेहद दुख का विषय है कि कोविड-19 महामारी टिकाऊ समाधान की उपलब्धि में बाधा बनी है। इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि महामारी ने शरणार्थी संबंधी मूलभूत कानूनों को चुनौती दी है, विशेष रूप से शरण लेने का अधिकार और गैर प्रतिरोध के मुख्य सिद्धांत को। तथापि यह स्मरण दिलाया गया कि शरण लेने का अधिकार जिनीवा की संविधान में निहित है, जो आखिरकार यह स्वीकार करता है कि हम एक मानव परिवार हैं। वक्तव्य में इस तथ्य की पुनरावृत्ति की गई कि महामारी बढ़ती चली जा रही है और साथ ही शरणार्थियों एवं आप्रवासियों की समस्याओं का भी उपयुक्त उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में शरणार्थियों और आप्रवासियों की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। वेटिकन मिशन ने और अधिक मजबूत सहयोग और एकात्मता का आह्वान करते हुए कहा कि इस समय यह अनिवार्य है कि बड़ी संख्या में शरणार्थियों और विस्थापितों को शरण देने वाले मेजबान देशों की मदद की जाए। श्रीलंका के कैथोलिक धर्माधिपति कोलंबो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल मेलकम रंजीत ने सरकार की मुत्तु राजवेला विकास योजना के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा है कि इससे पर्यावरण तथा वनस्पति और जीव को भारी क्षति पहुंचेगी। श्रीलंका सरकार ने मुत्तु राजवेला आर्द्र भूमि पर एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG बिजली संयंत्र परियोजना का प्रस्ताव किया है। सरकार की योजना लगभग 405,000 वर्ग मीटर आर्द्र भूमि को समुद्री रेत से भरने की है। कोलंबो से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुत्तु राजवेला आर्द्र भूमि वनस्पति और जीव संबंधी समृद्ध विविधता वाला एक क्षेत्र है, जिसमें जानवरों की 209 प्रजातियां, मछलियों की 40, सरीसृपों की 31, पक्षियों की 102, तितलियों की 48 और मैंग्रोव की 18 प्रजातियों सहित पेड़ों की 194 प्रजातियां शामिल हैं। ऊका समाचार के अनुसार श्रीलंका की पर्यावरणीय एजेंसी को लिखे एक पत्र में कार्डिनल रंजीत ने कहा कि वनस्पति और जीव को क्षति पहुंचाने के साथ साथ सरकार की उक्त परियोजना कई स्थानीय जनजातियों से उनकी जीविका के साधन छीन लेगी। कार्डिनल महोदय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सरकार की उक्त परियोजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को केवल 30 दिन का समय दिया गया है ताकि वे इस विषय में अपनी राय दें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकार्य है, इसलिए कि लॉकडाउन के समय किसी से भी सलाह मशवरा करने का कोई साधन नहीं है। हिरासत में 84 वर्षीय कैथोलिक पुरोहित फादर स्टैन की मौत के बाद भारत के विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर उनसे सभी कैदियों की रिहाई का आह्वान किया है जो राजनीति से प्रेरित मामलों के लिए जेल में बंद हैं। फादर स्टैन स्वामी की मौत के 2 दिन बाद उक्त पत्र प्रकाशित किया गया। 84 वर्षीय येसु धर्म समाजी पुरोहित फादर स्टैन स्वामी की 5 जुलाई को कोविड-19 महामारी से मुंबई के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उस समय वे बारंबार जमानत के ठुकरा दिए जाने के बाद हिरासत में थे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी सहित भारत के कई विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आग्रह किया कि वे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फादर स्टैन पर झूठे मामले थोपने, जेल में उनकी निरंतर नजरबंदी करने तथा उनके विरुद्ध अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 12 विपक्षी नेताओं में कई भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवे गौड़ा भी शामिल हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि फादर स्वामी को उनकी विभिन्न बीमारियों के इलाज से वंचित कर दिया गया था, जिसमें पार्किंसंस रोग भी शामिल है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के बाद ही जेल में उन्हें पीने के लिए तरल पदार्थ उपलब्ध कराया गया था। फादर स्टैन उन 16 कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों में शामिल थे जिन पर मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए गैर कानूनी माओवादियों के साथ साजिश रचने का आरोप था। 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव नामक गांव में एक हिंसक घटना में शामिल होने का आरोप लगाकर फादर स्टैन को विगत अक्टूबर माह में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। पत्र में कहा गया कि फादर स्वामी की जमानत और घर भेजे जाने की अपील को भी खारिज कर दिया गया था। केवल बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब कोविड से संक्रमित होने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 जुलाई को हृदयाघात से फादर स्टैन का देहांत हो गया था। कोविड महामारी संकट से निपटने में कथित विफलताओं के लिए विपक्षी दलों और वाम उदारवादी लेखकों एवं कार्यकर्ताओं के हमले का सामना करते हुए 7 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों का बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। बुधवार को हुए इस फेरबदल में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस फेरबदल प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने चिकित्सक और दिल्ली के विधायक संघीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को भी बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री के इस कदम को विपक्षी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल महामारी से निपटने में मोदी सरकार की विफलता बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। अप्रैल और मई माह में महामारी की दूसरी लहर ने सैकड़ों लोगों की मौत सहित विनाशकारी परिणाम छोड़े, जिनमें से कई लोग ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में अन्य कुप्रबंधन के कारण मारे गए। पूर्व संघीय गृह और वित्त मंत्री कांग्रेस के पी चिदम्बर ने ट्वीट किया कि वर्धन का जाना एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि मोदी सरकार महामारी के प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।